الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس سال کی قربانی کا دن اور عید کا دن ہم کو نصیب فرمایا جیسا کہ بڑوں سے ہم بارہا سنتے رہے ہیں کہ اسلام میں خوشی کے جو دو دن رکھے گئے ہیں جو عید کہلائے جاتے ہیں ان میں اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ جب بھی تمہاری خوشی کا موقع آئے گا تو تمہاری چھٹی نہیں ہوگی بلکہ عبادت کے کام اور تمہارے ذمے لگا دیے جائیں گے۔ رمضان کی عید کے موقع سے عید کی نماز لگا دی گئی، بقر عید کے موقع سے عید کی نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا کام ذمے میں لگایا گیا، تو مسلمانوں کے اسلام کے نام لیواؤں کو یہ بتایا گیا کہ خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا والے کاموں کا اضافہ ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ آج بھی قربانی جیسے حکم اور دیگر اسلام کے بہت سے احکام کو منوعاً مانتا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے مانتا ہے، لیکن امت میں ایک طبقہ وہ بھی ہو گیا ہے جو صرف اس حکم کو نہیں بلکہ شریعت کے دوسرے احکام کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے منحرف ہوتا جا رہا ہے، راستے سے خود ہٹ رہا ہے اور دوسروں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی قربانی کے بعد میں کئی سارے واقعات دیکھنے میں آئے، سننے میں آئے۔ عید گزر چکی ہے تو وہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق سال بھر والے احکام سے ہے، پورے مذہب سے ہے، اس لیے وہ باتیں کبھی بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک صاحب نے بتایا عید کے بعد میں کہ ان کو دوسرے صاحب چھیڑ رہے تھے کہ بھئی یہ قربانی کا حکم قرآن میں کہاں ہے، قربانی کا حکم قرآن میں کہاں ہے۔ ظاہر ہے قربانی کرو، ان دنوں میں کرو، اس قسم کا واضح حکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن شریعت کے دوسرے جیسے احکام قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، فقہ میں آئے ہیں، اس طرح سے قربانی کا حکم آیا ہے۔ سب سے پہلا یہ جو سوال ہے، یہ جو ذہن ہے کہ کوئی چیز اگر شریعت ہے تو اس کو قرآن میں دکھاؤ، اس کو قرآن میں بتاؤ، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو بات شریعت کی ہوگی، دین کی اور مذہب کی ہوگی، تمام تر تفصیلات کے ساتھ قرآن میں ہی ہوگی تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں۔ ایسا کہنے والا بظاہر تو لگتا ہے کہ قرآن کو ماننے والا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھو تو اس سے بڑا قرآن کا منکر نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا قرآن کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر میں وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قرآن کی بات مانوں گا، لیکن پردے پسے پردہ، اس بات کے پردے میں ایک اور بات وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ بات قرآن میں صاف طور پہ نہیں ہوئی، رسول اللہ بھی بولیں گے تو نہیں مانوں گا، معاذ اللہ، یہ والی بات ہے وہ۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے اے نبی، یہ اس لیے اتارا ہے کہ اس کی تفصیل تم بتاؤ گے لوگوں کو، تو تفصیل کے بتانے کا کام قرآن نے خود نبی کے ذمہ لگایا ہے۔ اب یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے قرآن میں دکھاؤ تو مانوں گا ورنہ نہیں، آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بڑی غلطی وہ کر رہا ہے، اور کس قدر امت مسلمہ علم سے اور اپنے مذہب سے دور ہو گئی ہے کہ اس کے اس دعوے کے دھوکے کو، سفسطے کو، دجالیت کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ بڑی اچھی بات کر رہا ہے بھائی، یہ قرآن پہ چلنے والا ہے بھائی، یہ قرآن کو ماننے والا ہے بھائی۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان کو ایک جملہ بولا جاتا ہے कलिमतु हक्किन उरीद बिहिल बातिल, बात तो ठीक कह रहा है मकसद ठीक नहीं है, बात तो ठीक कर रहा है नीयत ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। कलिमतु हक्किन उरीद बिहिल बातिल, ये इस किस्म की बातें इसी कबील से होती हैं। अब जो बंदा ये कह रहा है कि मुझे कुर्बानी का हुक्म कुरान में दिखाओ, वो बंदा बज़ाहिर अब उसको पता तो है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ की हैं, पता होने के बाद ये सवाल करना, आप बताएंगे कि किस बात की गम्माजी कर रहा है, यानी उसकी फिक्र को आप थोड़ा सा जांचने और पढ़ने की कोशिश करें, वो कहना क्या चाहता है कि रसूलुल्लाह का अमल होगा भी तो मेरे लिए काबिल अमल नहीं है क्योंकि कुरान में मुझे नजर नहीं आता। और फिर ये भी है, जाम देखिए लोगों का, कॉन्फिडेंस देखिए दीन को लेकर, वही के इल्म को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि पता कुछ है नहीं और सबसे बड़े बनने चले। जिन्होंने कुर्बानी की है वो कुरान के हुक्म पर की है या कुरान के हुक्म के खिलाफ की है? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ कुर्बानी बल्कि जो जो हुजूर से साबित है वो कुरान के हुक्म के मुताबिक की है या कुरान के हुक्म के खिलाफ किया है? जब उनसे कोई चीज साबित है तो वो साबित है, जब उनसे कोई चीज मशरू है कि हाँ ये शरीयत का हिस्सा है तो फिर वो शरीयत का हिस्सा है। मुझे नजर नहीं आता, तुम्हारे पास ऐसी आंख है कहां कि तुम देख सको? मुझे नहीं पता, तुमने इल्म हासिल कब किया है कि तुम्हें पता चले? मुझे समझ में नहीं आता, कभी अकल को तोल के देखा है अपनी के कितनी वजन संभाल सकती है? वही का इल्म जो संभालेगी। ये मुझे 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 का जो किस्सा है ये बड़ा गड़बड़ा देने वाला है, ये बड़ा नुकसान में ले डालने वाला है। और एक और बात जो समझने की है इस हवाले से वो ये है कि एक आदमी एक फील्ड में अगर आगे बढ़ जाए तो जरूरी नहीं है हर फील्ड में आगे हो, दुनिया के एतबार से कोई ग्रेजुएटेड हो जरूरी नहीं है दीन में भी उसको दखल देने की इजाजत हो जाए। जैसे अगर कोई आलिम दीन है तो वो डॉक्टर का काम तो नहीं कर सकता ना, अगर उधर वो हाथ पैर मारेगा तो बोलेंगे ये आपकी फील्ड नहीं है, वो इंजीनियर का काम तो नहीं कर सकता। उधर हाथ पैर मारेगा कोई आलिम तो यही बोलेंगे, अगर वो उसका इल्म नहीं रखता तो यही बोलेंगे कि भाई वो तुम्हारी फील्ड नहीं है, और वो ऐसा करेगा भी क्यों, खुद को वो इस हलाकत वाले जोन में डालेगा क्यों? तो हम लोगों को ये बात समझने की है कि अगर हम एक फील्ड का इल्म हासिल करते हैं, एक फन अगर हम हासिल करते हैं, एक जगह की तालीम अगर हम पाते हैं, तो उस बारे में जिस जिस हद तक आपकी डिग्री होगी उस हद तक की बात आपकी ली जाएगी, लेकिन दीन के अंदर उसकी वजह से हमको दखल देने का मौका होगा ये बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं होगी। जब ऐसा होना शुरू होगा तो इसी को बोलते हैं कि लोग मनमानी का शिकार हो गए, अपने नफ्सों के ताबे हो गए, इसी को बोला जाता है कि लोग अपने नफ्सों के ताबे हो गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई चीजें मोहलिक हैं, यानी इंसान के दीन को और आखिरत को तबाह कर डालने वाली, उसके बाद उसका दीन बचता नहीं है। उसमें से फरमाया वह हवा मुत्तबा, दिल की ऐसी ख्वाहिशात जिसकी बंदा पैरवी करता है, पीछे चलता है, दिल में एक बात आ गई हाँ, जहन में एक बात आ गई हाँ, अब इसके हिसाब से होना चाहिए, दीन भी इसके हिसाब से होना चाहिए, नवाज अल्लाह के रसूल को भी इसी सोच के साथ में चलना और आगे बढ़ना है। अगर उन्होंने उम्मत को ऐसा हुक्म दिया है जो मेरी समझ में आता है हाँ तो ठीक है, और अगर उन्होंने ऐसा हुक्म नहीं दिया है तो फिर वो उस जमाने के लिहाज से था, अगर कई किस्म की ताबीलात करके उसको टाल दिया जाएगा। तो लोगों को बोला जाता है भाई दाढ़ी रखो, कुरान में दिखाओ। नमाज पढ़ने क्यों आए? अल्लाह का हुक्म है, वो कुरान में नजर आया। जुमा के लिए आए, जुमा के दो रकात पढ़ो, मुझे दिखाओ कुरान में। पहले तकबीर तहरीमा करो, फिर सना पढ़ो, फिर तिरात करो, फिर रुकू करो, फिर सजदा करो, फिर पहली रकात मुकम्मल करो, फिर दूसरी रकात ऐसी पढ़ो, फिर तहज्जुद में तशहुद में बैठो, फिर सलाम फेरो। ऐसा करते हैं? हाँ करते हैं। क्यों? ऐसे ही साबित है, कुरान में कहा है दिखाओ। दीन की दूसरी बातों को जिस तरह से साबित होने की बुनियाद पर मानते हैं, हमारी मर्जी के खिलाफ भी कुछ अहकाम अगर वैसे आते हैं तो मानना होगा। अगर इस बुनियाद पर माना जाए, ये तो असल में ये है मनमानी और अपने ख्वाहिश को टेका देना एक बात का, उनको ये किस्सा नहीं है, उनको ये नहीं चाहिए कि इसकी दलील दिखा देंगे तो वो हुक्म की तामील कर लेंगे। फिलहाल तो हमें बात टलाने का एक मौका मिल जाएगा ये कह करके, साफ तौर से वो दिखा नहीं पाएंगे, ये है, ये किस्सा है उसके पीछे। लिबास के लिए बोला जाए तो बोलते हैं कुरान में ऐसे लिबास का कहा है, अरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना था, अरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास जो था वो उनके फैशन के ताबे था। उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे के अंदर भेजे गए थे उस मुआशरे में वैसे ही लिबास का रवाज था, तो हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना था, खुदा ना खास्ता अगर आज भेजे गए होते तो आज का जिस जिस जगह वो भेजे जाते उस जगह का जो फैशन होता उसको फॉलो करते। माज़अल्लाह, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कितनी कितनी बातों में, कितनी छोटी बातों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों से अपने को अलहदा करने और करवाने की कोशिश की है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इल्म हासिल करें पता चलेगा। इमामा पहनना सुन्नत है, अरब पहनते थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहनते थे। सहाबा को हुक्म दिया इमामे के नीचे टोपी पहनो, इमामे के नीचे टोपी पहनो। वजह क्या बताई कि जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ इमामा पहनते टोपी नहीं। अब वो लोग कहाँ है जो कहते हैं कि हुजूर ने अपने जमाने के फैशन और मुआशरे को फॉलो किया है, वो बताएं ये बात क्यों कही गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहनों को साफ रखा करो, यहूद और नसारा अपने सहन साफ नहीं रखते। आशूरे का रोजा है, एक दिन वो रोजा रखते थे, इबादत का मौका है, फरमाया हम रोजा रखेंगे शुक्राने में। क्यों? यहूद रोजा रखते हैं शुक्राने में कि मूसा अलैहि सलाम को और उनकी कौम को अल्लाह पाक ने नजात दी थी फिरौन और उसके जुल्म से, तो मूसा के मानने वाले तो हम हैं, तो इस शुक्र के हकदार तो उनसे ज्यादा हम हुए क्योंकि पूरी बात उनकी हम मानने वाले हैं। उनकी पूरी बात जब ही पूरी होगी ना, उनकी पूरा मानने वाला जब ही समझा जाएगा, जब पूरी बात मानी जाए। उन्होंने फरमाया था आखिरी नबी आएंगे तो मैं भी उन पर ईमान लाता हूँ, और अगर कोई जिंदा हुआ तो उसको भी ईमान लाना होगा, उस वक्त जो होंगे उनको भी उनकी बात माननी होगी। तो जो इस बात को मानेंगे वो हजरत मूसा को पूरा मानने वाले हैं, जो इस बात को मानने वाले हैं वो हजरत ईसा अलैहि सलाम को पूरा मानने वाले हैं, जो आखिरी नबी का इनकार करके हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाते हैं वो उनको पूरी तरह फॉलो करने वाले नहीं। और कुरान ने कहा कि ईसाइयों में से और यहूदियों में से, तौरात के मानने वालों में से और इंजील के मानने वालों में से जो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा उसके बाद वो छोटा या बड़ा कोई भी अमल करेगा तो दुगना अजर मिलता जाएगा। या अय्युहल लजीना आमनु तक्कुल्लाह व आमिनु बिरसूलिही युतिकुम किफ्लैन, वो दोहरा अजर देगा। हम नमाज पढ़ेंगे तो हमको एक है, एक है, एक नमाज का सवाब है। वो नमाज पढ़ेंगे तो हजरत जिस मजहब पर भी वो पहले ईमान रखते थे उस मजहब के मुताबिक मानने का सवाब, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब के मुताबिक मानने का सवाब। वो सदका करेंगे तो दोहरा सवाब, हम सदका करेंगे तो एक गहरा सवाब। तो जब उनको फजीलत भी सुनाई गई फिर भी नहीं मानते हो, जब उनको अजर का वादा किया गया फिर भी नहीं मानते हो, तो अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम दिए हैं उनमें अपनी उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को उम्मत गैर मुस्लिमा से तशख्स बरकरार रखने का साफ हुक्म दिया, अपनी इम्तियाज और पहचान बनाए रखने का साफ हुक्म दिया, छोटे छोटे चीजों के अंदर इस तक का हुक्म फरमाया। आशूरे के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि आशूरे का दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को यहूद रोजा रखते हैं, हुजूर को पता चला तो आपने फरमाया हजरत मूसा अलैहि सलाम को फिरौन से नजात मिलने की शुक्राने में जब ये रख रहे हैं तो इसके तो हम ज्यादा हकदार हैं, लेकिन पता चला यहूद भी रखते हैं तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ी अपना तशख्स बरकरार रहना है, थोड़ा उम्मत मुस्लिमा का फर्क होना है। फरमाया अगले साल अगर मैं रहा तो 2 दिन रखूंगा, एक दिन पहले या एक दिन बाद में। इसलिए उलमा फरमाते हैं 9-10 का या 10-11 का रोजा रखना है। तो इबादतों ही में नहीं मुआशरत के अंदर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा के तशख्स को बरकरार रखने की पूरी कोशिश फरमाई, सहाबा को तलकीन फरमाई, उम्मत को इसके असबाब दिए। एक सहाबी जा रहे थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आ रहे थे, उनको देखा उनका जो लिबास था तहबंद था वो जमीन से घिसट रहा था, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरफा सौबक, अपने कपड़ा अपना जो इजार या तहबंद है वो उठा लो ऊपर कर लो। फिर आप ने फरमाया कि इससे कपड़ा साफ रहता है और तुम्हारा रब राजी रहता है, तुम्हारा दिल पाकीजा रहता है। ये बातें इरशाद फरमाई, तो उन्होंने हुजूर के हुक्म की इल्लत ये समझी कि आप फरमा रहे हैं ये कपड़ा नीचे लग रहा है खराब हो रहा है, तो उसकी उसका जवाब उन्होंने दिया अपनी तरफ से ये सोचकर। क्या जवाब दिया? फरमाया कि या रसूलल्लाह ये बहुत ही हल्का कपड़ा है, सस्ता कपड़ा है, चीप सा कपड़ा है, अगर खराब हो भी जाए तो क्या? अब हम लोगों को, इस माशरे में रहने वालों को, उम्मत मुस्लिमा को यहाँ एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सबक दिया है, वो बहुत अहम है, वो जिंदगी भर काम आने वाला है। जब उन्होंने ये वजह बताई ना कि ये बहुत सस्ता कपड़ा है, अगर खराब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, तो आपने फरमाया अमाला काफी या उसवा, अमाला काफी या उसवा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई लायक तकलीद या उसवा नमूना नहीं है, यानी मैं तुम्हारे लिए काबिल अमल हस्ती नहीं हूं कि मुझे देखकर तुम ऐसे करो जैसे मैं करता हूं, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं है। फौरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपके जो है ना टखने से आधी बारिश ऊपर तक ये तहबंद था, तो उन्होंने फौरन ऊपर चढ़ा गया। तो ये सबक हम लोगों को सबसे पहले याद रखने का है, हर काम से पहले ये सबक याद रखने का है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आपकी सूरत में अल्लाह को राजी करने वाले कामों का नमूना और उसवा हमारे सामने आइडियल रखा गया कि अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को खुश करना है, दुनिया में आने के मकसद को पूरा करना है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा बन के दिखाना है जितना हो सकता है। सिर्फ नमाज पढ़ने की हद तक नहीं, जकात देने की हद तक नहीं, रोजा रखने की हद तक नहीं, सिर्फ इबादात की हद तक और अकायद की हद तक नहीं, बल्कि हमारे मामलात की हद तक भी, यानी कमाने धमाने के, बिजनेस के, जॉब के, मुलाजमतों के, तिजारत के, जिरात के जो किस्से हैं, पैसे कमाने के, अपने पेट पालने के, बीवी बच्चों के और अपनी जरूरतों के पूरा करने के लिए, माल के हासिल करने की जितनी सूरतें हैं उनके अंदर भी हमको ये करना है। मुआशरत है, हम जो रहन सहन, हमारा जो रहन सहन है, हमारे साथ जो रहने वाले हैं, उठने बैठने वाले हैं, उनके जो हकूक बताए गए हैं वो इजी लेने की चीज नहीं है, उनके जो हकूक बताए गए हैं वो इजी लेने की चीज नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी मुआशरत अच्छी है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, सबसे ज्यादा भारी और वजनी अमल कयामत के दिन जो तराजू के अंदर रखा जाएगा इंसान का, हुस्ने अखलाक। एक बंदा रात भर तहज्जुद पढ़ता है, दिन भर रोजा रखता है, और एक बंदा अपने अखलाक को मुसलसल सुधारने की कोशिश करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे उम्मीद है कि यह हुस्न अखलाक की कोशिश करने वाला, ये हुस्नुल हसनुल खुलुक जो है, ये रात भर रोजे तहज्जुद पढ़ने वाले और दिन भर रोजा रखने वाले के अजर को पालेगा। अब अंदाजा करें कि हमारे साथ जितने अहवाल लगे हुए हैं ना, सारे अहवाल में हमको तालीमात दी गई हैं, यानी दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में ये कि मुसलमान की हर चीज मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान की हर चीज मुसलमान होना है, मतलूब है ये अल्लाह को, मतलूब है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुक्म है हम लोगों को इस बात का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। ये हुक्म किस मौके से आया वो जहन में रख लें तो बहुत सी गलतफहमियां हमारी दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जहन जरा उसी हिसाब से चलने लग गया है आजकल। एक सहाबी पहले मजहब यहूद इख्तियार, यहूदी थे, इस्लाम लाए, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कहा, सोचा, ऐसा सोचा उन्होंने कि यहूदियों के पास में बास चीजें खाने पीने की हराम है और इस्लाम में उनका खाना फर्ज नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं कि अपने ऊपर अमलन उन चीजों को हराम कर लेता हूं कि मैं उनसे परहेज करूंगा, तो मजहब यहूद पर भी अमल हो जाएगा और इस्लाम पर, चूंकि इसका खाना जरूरी है नहीं तो फर्ज तो छूटेगा नहीं, तो कोई मसला नहीं होगा, तो इधर फर्ज नहीं छूटेगा उधर दूसरे मजहब पर भी अमल हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस जहन से तुमको चलने की इजाजत ही नहीं है, इस जहन से हमको चलना ही नहीं है, उन्हों भी राजी इन्हों भी राजी, सुलह कुल हमारा मसलक नहीं है, ज्यादा कुल बनने की तुमको जरूरत नहीं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ्फा, पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब इस्लाम में आने के बाद यहूदियत में क्या था पलट के देखने की जरूरत नहीं है, ईसाइयत में क्या था मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, अगर इस्लाम ही के बाद दूसरे शोबे आपस में एक दूसरे से मिलकर सवाब की नीयत से कोई जोड़ना चाहता है बिल्कुल जोड़े, अपना सवाब बढ़ाने के वास्ते नीयत पे आमाल का मदार है, कैसा अल्लाह पाक ने मजहब बनाया है, दीन बनाया है, सवाब पर नीयत पर, सवाब का मदार नीयत पर है, एक अमल होगा 10 नीयतें होंगी नेक वाली जायज वाली, सबका सवाब देंगे अल्लाह पाक, अमल एक ही होगा। अब मस्जिद को आए हैं, जुम्मा पढ़ना है, जुम्मा का खास हुक्म आया है कुरान में जिक्र के लिए अल्लाह की तरफ दौड़ो, इसलिए आ गए, एक नीयत ये हो गई, मुसलमान भाइयों से मुलाकात होगी, एक नीयत ये हो गई, हमारा जो वक्त है दूसरी तरफ गुजरेगा तो खराब गुजरेगा, अच्छे माहौल में हमारा वक्त गुजर जाए इस नीयत से आएंगे, तो ये तीसरी नीयत एक हो गई। इस किस्म की कई नीयतें हम जोड़ सकते हैं एक ही अमल के अंदर, जैसे बिजनेस में माल कमाने में
अपने फैशन को बनाने में, अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल फ्यूचर को हम जो है ना ब्राइट करने के लिए जो कोशिश करते हैं ना, अपनी नीयत को भी ब्राइट करने, अमल और दीन को भी ब्राइट करने की जरूरत है। उसके लिए सोचना पड़ता। बिजनेस में जहन चलता है, माल कमाने में जहन चलता है, सवाब बढ़ाने में जहन नहीं चलता। ईमान वाला नूर हासिल करने की तरफ जहन ज्यादा नहीं चलता, अमल वाला नूर हासिल करने की तरफ जहन ज्यादा नहीं चलता। इस तरफ चलाना है और पूरे तरह हम लोगों को मानना है। कोई बात शरीयत से साबित है या नहीं है ये जानने के वास्ते एक अहम नुक्ता पॉइंट की बात यह है, वो बात कुरान से साबित हो, फिका या फिका हदीस से साबित हो, या फिका से साबित हो, अगर इन तीनों में से किसी में वो बात मौजूद है तो वो शरीयत का हिस्सा है, वो करने वाला काम है। अगर रुकने की चीज है तो उससे रुकना जरूरी है। किसी बात को अमल करने के वास्ते ये देखना नहीं है कि कुरान में आया क्या, ये देखना है कि इन तीन में से आया क्या। अगर इन तीन में से किसी में आया है तो मानना है, अगर इन तीन में से किसी में भी नहीं आया है तो फिर ये देखेंगे कि वो हराम की हदूद में है या हलाल की हदूद में है। अगर हराम की हदूद में है तो बचना होगा, और अगर जायज है तो फिर मर्जी है, चाहो करो चाहो छोड़ो। लेकिन एक बुनियादी अहम नुक्ता क्या है कि किसी बात को शरीयत का हिस्सा है मालूम करने के वास्ते कि तीन चीजों में से वो है या नहीं, ये देखना होगा, कुरान में, हदीस में और फिकह में। और हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुरान और हदीस को यूट्यूब से और गूगल से हासिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अपना इलाज गूगल से नहीं करवा सकते बीमार पड़ जाएं, और अगर कोई करवाता है तो वो इंतहाई अहमक और बेवकूफ है, ऐसे ही कुरान और हदीस के उलूम और दीन को जानने का जरिया गूगल नहीं है, दीन को जानने का जरिया यूट्यूब नहीं है, उस पर डले हुए बयानात नहीं है, उसके ऊपर मौजूद उलमाए किराम के हो या दूसरों के हो, वो सब मिक्स चीजें हैं, वो गुमराही का रास्ता है। यानी इस माना में गुमराही का रास्ता है कि उधर जाने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो सीधे रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे, सब कुछ है वहां पर, वो पुरखतर रास्ता है वो। अल्लाह पाक हम सबों को दीन का सही फहम नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।